ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मिलावटी घी और नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों में भारी आर्थिक धांधली का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कल से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। कुछ हिस्सों में AQI 400 को पार कर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली NCR में महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। राजधानी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के अवसर पर पूरे शहर में 1000 कृत्रिम छठ घाटों का निर्माण किया है। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित पार्कों में भी श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना कर सकें। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी श्रद्धालुओं को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और उनके जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी छठ घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा में शामिल हुई। हमारे संवाददाता ने ITU पर बने घाटों और वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए शहर में विभिन्न हिस्सों में छठ घाटों का निर्माण किया है। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्राम स्थल, शौचालय, हेल्प डेस्क सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घाटों पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं और पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर भक्तों के लिए अस्थायी तालाबों का भी निर्माण किया गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में छठ समिति के आयोजक प्रभात त्रिपाठी ने बताया कि समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम सुविधा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
समिति के तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, जैसे कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में कोई भी बाहर नदी में न जाए, उसके लिए हमने बैरिकेटिंग करके रखी। आप टेंट में आप देखेंगे छोटे छोटे टेंट्स, ताकि उनको शीत न लगे।
कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सभी श्रद्धालुओं को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने छठी मैया से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहर के विभिन्न इलाकों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ घाटों का निर्माण किया है।
सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों को और दिल्ली के सभी निवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आज छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसी तरह दिल्ली सरकार द्वारा छठ घाट बनाए गए हैं। आज मैंने भी अभी छठी मैया की पूजा करी है और छठी मैया से और भगवान भास्कर से सभी दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना।
इस बीच पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में सरकार द्वारा बनाए गए कृत्रिम घाटों में पानी नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय रेलवे छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। त्योहार मनाने के बाद अपने अपने घर जाने वालों को इससे लाभ पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक करीब 476 रेलगाड़ी चलाने की योजना है। उत्तरी रेलवे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्टेशनों से देश के विभिन्न भागों के लिए करीब 20 गाड़ियां चलाएगा। इनमें वाराणसी, प्रयाग, छपरा, गोरखपुर, दरभंगा, बरौनी और हुड़ा शामिल है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे स्टेशनों से यात्रियों के सुविधाजनक निकास के लिए रेल विभाग ने रेल सुरक्षा बल के जवानों और स्वयंसेवकों को तैनात किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मिलावटी घी और नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि टीम ने हरियाणा के जींद में चल रही फैक्ट्री समेत कई अलग अलग जगह छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कच्चा माल और 240 लीटर नकली घी बरामद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों में भारी आर्थिक धांधली का आरोप लगाया। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि निजी कंपनी और दिल्ली सरकार ने मिलकर बिजली वितरण कंपनियों को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इन कंपनियों के खातों की कैग या न्यायिक जांच कराने की मांग की।
दिल्ली सरकार को सबसे पहले तो रेगुलेटरी एसेट लगने ही नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने लगाया तो ये केवल तब लगाना चाहिए था जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया और ये जो लायबिलिटी है दिल्ली की जनता पर 21,000 रुपए का बोझ और कर्ज लाद।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस कल से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। 1 महीने तक चलने वाली ये यात्रा 4 चरण में आयोजित की जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत राजघाट से होगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी ने ये यात्रा दिल्ली वालों के अधिकारों, उनकी समस्याओं और उनके विकास के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री यादव ने बताया कि इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता से जुड़कर संवाद स्थापित करेंगे। ये यात्रा 4 दिसंबर को समाप्त होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार जल्दी ही आतंकरोधी नीति और रणनीति लेकर आएगी। नई दिल्ली में आतंकरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया गया है। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अभिकरण अन्वेषण NIA ने आयोजित किया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के श्री मोदी के आह्वान की दुनिया भर में सराहना हुई है। श्री शाह ने कहा कि 2006 से 2013 की अवधि की तुलना में 2014 से 21 की अवधि में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है।
10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ है।
गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमले और देश के खिलाफ आतंकवादियों की साजिश अदृश्य ढंग से रची जाती है। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी वाला विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून दुनिया भर में सर्वाधिक आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से उन्नत कानून हैं। उन्होंने कहा कि हाल के समय में सुरक्षा से संबंधित कई कानूनों में परिवर्तन किया गया है। अपने भाषण में श्री शाह ने आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 36,468 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष उस सप्ताह में मनाया जाता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है। इस वर्ष ये सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया था। इसका विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति। समारोह के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग की 3 पुस्तिकाओं और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी विशेष पत्र आवरण का लोकार्पण भी किया जाएगा। वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कल नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में वैश्विक और भारतीय विचारक, निगम, निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, विद्वान और शोधकर्ता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर विचार विमर्श करेंगे। महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शौर्य गाथा परियोजना भी शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को प्रोत्साहन देना और संरक्षण करना है। महोत्सव के दौरान सैन्य विषयों पर कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का लोकार्पण भी होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपनी उपलब्धियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने योगदान को प्रदर्शित करते हुए एक फोटो प्रदर्शनी लगाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह दिल्ली में AQI 377 दर्ज किया गया। CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI 400 को पार कर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार का AQI 435, अलीपुर का 435, न्यू मोतीबाग का 418, पंजाबी बाग का 411 और नेहरू नगर का AQI 408 दर्ज किया गया। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के गाजियाबाद स्टेशन पर कल नमो भारत अनप्लग्ड म्यूजिकल शुक्रवार सीजन 1 कार्यक्रम के आखिरी प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। RRTS ने बताया कि इस अंतिम कार्यक्रम में 5 म्यूजिक बैंड और गायकों द्वारा संगीत प्रस्तुतियां दी जाएंगी। RRTS ने इसमें सभी लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा है। हिमाचल प्रदेश के चैल में देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय सैनिक स्कूल के शताब्दी समारोह की शुरुआत 242 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन के साथ हुई। अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत पंजाब के जलंधर से हुई, जहां 1925 में स्कूल की स्थापना की गई थी और अब यह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चैल में अपने वर्तमान स्थान पर पहुंच रही है। मैराथन बालाचोर, पिंजौर और सोलन से होते हुए चैल में 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान पर समाप्त होगी। राजधानी दिल्ली में आज मौसम हल्की धुंध के साथ सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि रात के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मिलावटी घी और नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों में भारी आर्थिक धांधली का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कल से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है और कुछ हिस्सों में AQI 400 को पार कर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।